सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः चमजस्वजम्मि देशे येन विहानेन जम्मि कालं मे नादं जिनेन नियदम् जम्मं वा अहवमरणं वा संतस्वतं मि देशे तेन विहानेन तं मि कालं मे कोसक्कदिवारेदुम् इन्दो वा तः जिनिन्दो वा एवं जो निशयदो ज्ञानदिदौ वाणि सौवपश्चाये सो सद्दिष्ठि सुत्थो यो संकदिसोः कुदिष्ठि। क्रमबद्ध पर्याय का अनुशीलन पुस्तक के आधार से क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत हम यहाँ अभ्यास कर रहे हैं। उसके संबंध में प्रश्नोत्तर वाला जो द्वितीय खंड है पुस्तक का, उसमें से 13वां प्रश्न पढ़ेंगे आज। पानु 102 गुजराती कही 101 101 गुजराती, हिंदी 90 हिंदी में नई एडिशन 87 13वां प्रश्न पढ़ते थे। यदि ऐसा माने तो क्या हानि है कि केवली के ज्ञानानुसार सब कुछ क्रमबद्ध है और हमारे ज्ञानानुसार अक्रमबद्ध, क्योंकि केवली को भविष्य का ज्ञान है और हमें नहीं। ऐसा मानने से अनेकांत भी सिद्ध हो जाता है। ये प्रश्न करता ही सिखा रहा है कि ये अनेकांत हो सकता है कि हमारे ज्ञान से क्रमबद्ध नहीं है और केवली जो क्रमबद्ध है ये अनेकांत होगा। उसको उत्तर देते हैं, हमारे मानने से वस्तु का स्वरूप दो प्रकार का थोड़े ही हो जाएगा। वस्तु स्वरूप तो जैसा है वैसा ही होगा। 10 आदमी होंगे और 10 प्रकार से मानेंगे तो वस्तु स्वरूप तो बदली नहीं होगा, वह तो जैसा है वैसा ही है और हमें भी तो उसे वैसा ही समझना है जैसा कि वह है। अपनी मान्यता थोड़े ही उस पर लादना है। जब तक हमारी मान्यता वस्तु स्वरूप के समान नहीं होती है तब तक वो मिथ्या भ्रांति चलती रहती है और तब तक हम दुखी होते रहते हैं, क्योंकि हमारी मान्यता के अनुसार वस्तुएं परिणमती नहीं है। हमारी मान्यता के अनुसार वहाँ द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप है नहीं है और हम अलग मानकर उसी के अनुसार हमारे सारे प्रयत्न करते हैं तो ये सारे झूठे साबित हो जाते हैं। केवली भगवान का ज्ञान पर्यायों की क्रमबद्धता को स्पष्ट देखता जानता है और हम उसे आगम से अनुमान से युक्ति से जानते हैं। केवली भगवान डायरेक्ट प्रत्यक्ष जानते हैं और हम जो केवली भगवान ने जानकर बताया है जो आगम में लिखा हुआ है, यानी वो है तो मूल सर्वज्ञ का उपदेश और आगम यानी आचार्यों की परंपरा से जो शास्त्र लिखे हैं, मूल उपदेश तो सर्वज्ञ का है इसलिए आगम को भी प्रमाण कहते हैं। और अनुमान यानी हम कुछ सिद्धांत लॉजिकली उसको हम प्रूव करते हैं तो उसको कहते हैं अनुमान से भी हम जान सकते हैं और युक्ति से जान सकते हैं। युक्ति यानी जो हेतु दिए जाते हैं, न्याय दिए जाते हैं, उसमें प्रबल हेतु कौन सा है और कौन सा हेतु दुर्बल है या वो गलत साबित होता है, इस पर हम ही खुद विचार करें और हम इस निर्णय तक पहुंचे कि ये जो अभी आगम में बताया है यही सही है, इसको कहते हैं युक्ति द्वारा। शास्त्र में 4 बातें आती है और एक बात आती है आगम द्वारा, अनुमान द्वारा, वहाँ तो एक्चुअली ऐसा इनकी परंपरा से भी लिखा है, युक्ति से और अपने स्वानुभव से। जब यह निर्णय किया और हम आत्मसन्मुख हो गए उस समय आत्मा की अनुभूति आ गई तो अपने अनुभव से भी सिद्ध हुआ ना कि ये जो हमने जो निर्णय किया था वो सच है। बात कुछ ख्याल में आती है? स्वानुभव से कैसे सिद्ध किया? हमने निर्णय करके आत्मोन्मुख परिणाम में आत्मा का अनुभव कर लिया। आत्मा का अनुभव हुआ हमें तो पता चला कि ये हमारा जो अभी तक निर्णय सही नहीं हो रहा था, तो अब हमारा ये निर्णय सही हुआ। जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा निर्णय हो जाता है, और तब जब अंतसम्मुख परिणाम में जीव लीन हो जाता है तब उसे आत्मा का अनुभव हो जाता है। तो आत्मा के अनुभव द्वारा भी ये सिद्ध हुआ कि ये जो वस्तु का स्वरूप ऐसा है, ये सर्वज्ञ का स्वरूप ऐसा है, ये क्रमबद्ध का स्वरूप ऐसा ही है। हमने पहले देखा था ना कि ये अकेले पुस्तक पढ़कर या सुनकर क्रमबद्ध पर्याय का या सर्वज्ञता का निर्णय नहीं हो सकता। तो ये सारा ही निर्णय पहले तो बहिर्लक्षित ज्ञान में उसका निर्णय करते 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 आत्मसन्मुख परिणाम हो गए, और अपने आत्मा के लक्ष्य से जब सर्वज्ञ स्वभाव का हमें एहसास होगा तब वो सच्चा निर्णय कहलाएगा। आगम द्वारा तो आपको ये बहिर्लक्षी ज्ञान हुआ कि ऐसे ऐसा वस्तु का स्वरूप है, परंतु ये वस्तु का स्वरूप है ये जाना किसने? पूरा ही जो स्वरूप है वो किसने? ज्ञान है, यानी वो पहले तो सर्वज्ञ के ज्ञान में ये तो सारा आ गया। तो सर्वज्ञ के ज्ञान में यानी केवल ज्ञान की एक समय के पर्याय में ये सारा ही वस्तु स्वरूप झलका। तो ये केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय है, वो कहाँ से उत्पन्न हुई? ज्ञान स्वभाव में से, ज्ञान स्वभाव में से पर्याय प्रकट हुई है, यानी स्वभाव में ऐसी पर्याय की योग्यता पड़ी है ना, तो ये स्वभाव में से प्रकटि। तो ये स्वभाव उसी को कहते हैं कि जो तीन काल में नष्ट नहीं होगा और जिसमें पर की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो ये स्वभाव जब केवल ज्ञान हुआ तब प्रकटता के अभी भी है, यानी अनादि से है। स्वभाव उसे कहते हैं जो अनादि अनंत होता है। तो हम भी ज्ञान स्वभावी है, तब अपने ज्ञान स्वभाव को जब हम पकड़ेंगे, वहाँ तो निर्णय तो हुआ केवल ज्ञानी का, सर्वज्ञ का, क्रमबद्ध पर्याय का। वो निर्णय करते 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 ज्ञान ने अपने आप को पकड़ लिया और यहाँ सम्यक दर्शन हो गया, यानी वो सर्वज्ञ के या सर्वज्ञता के क्रमबद्ध पर्याय के विकल्प करते करते वो भी छूट गए, वो छूट गए, और ज्ञान अपने सन्मुख होकर अपने आत्मा को पकड़ लेता है और पर्याय में वहाँ आनंद की प्राप्ति हो जाती है, सम्यक दर्शन होता है। यानी अपने आत्मानुभव से भी सिद्ध हुआ कि जो हमने निर्णय किया था वो सही है। जब परलक्षी का है ना, बहिर्लक्षी, और अनुभव होगा तभी आपका निर्णय सही कहलाएगा। तब तक कहीं ना कहीं कुछ खोट बाकी, ये तो अपने ही तलाशना है कि हमारे में अभी अभिप्राय में क्या कहाँ बाकी है, रुचि में कहाँ क्या पड़ा है। अभी रुचि भी कहीं अन्य वस्तु की रहेगी तब तक आत्मा को पकड़ेगा नहीं उपयोग, उपयोग तो अन्यत्र ही भटकता है। तो रुचि अनुयायी वीर्य कहते हैं, जहाँ की रुचि है, आत्मा की तीव्र रुचि, तीव्र लगन, ऐसा नहीं कि बहुत। पकड़ते तो आवाज आता है, नहीं छोड़ने के जाता है। देखो यहाँ बातें हैं, वो तो प्रश्नकर्ता ने पूछा प्रश्न, नहीं नहीं अनेकांत भी आपको घटित होगा, यानी वो क्या प्रश्नकर्ता क्या कहना चाहता है? केवली के ज्ञान के अनुसार तो सारा क्रमबद्ध है, और हमारे ज्ञान के अनुसार अक्रमबद्ध है, वस्तु में ही क्रमबद्धता नहीं है हमारे ज्ञान के अनुसार, तो आपका अनेकांत भी घटित होगा, ऐसे उसको समझाना है। यानी वो जो वो स्वयं का अज्ञान है और वो समझाना चाहता है शास्त्रीय भाषा में कि अनेकांत का भी वो सही स्वरूप नहीं समझा है, तो क्या कहते हैं आपका अनेकांत भी घटित होगा और हमारा हमारी मान्यता भी सिद्ध होगी, तो उसको भी उत्तर देते हैं। यानी प्रश्न करता है उसकी सब भ्रांति चलती है ना, तो उसमें उसने अनेकांत को डाल दिया। जैसे कोई कोई अन्य अन्य हुए व्यवहार निश्चय अनेकांत, ये सारे बातें बीच में डालते हैं और ऐसा लगता है उनको कि चलो हमने शास्त्रीय भाषा में बात की तभी हम कुछ अधिक पढ़े लिखे हो गए इसके बारे में, या निमित्त के भी निमित्त तो है ना, हम उसका निमित्त तो बने ना, ऐसे जब जब कहते हैं शास्त्र, यानी शास्त्र की भाषा में बोलते हैं, परंतु उनके वो बोलने में ही उनका अज्ञान और प्रकट हो जाता है। जब सही पता नहीं है अनेकांत क्या है, जब सही पता नहीं है निमित्त उपादान क्या होता है, तब जो जो वो वार्ता करेंगे उनमें कहीं ना कहीं पकड़े जाएंगे, यानी कहीं ना कहीं उनका अज्ञान प्रदर्शित हो ही जाता है। मौन बैठते तो अच्छा रहता, उनका अज्ञान तो दुनिया को पता नहीं चलता, परंतु ये ऐसे और ज्यादा बातें करने लगते ना तो कहीं ना कहीं फिसल जाते हैं और उनका अभिप्राय प्रकट हो जाता है। ये ख्याल में नहीं, वो प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। हाँ तो देखो, यहाँ हमने देखा ना कि केवली भगवान तो डायरेक्ट जानते, क्रमबद्ध पर्याय का ज्ञान तो उनके है, और हम भी जानते हैं। कैसे जानते हैं? आगम से जाना हमने, आगम प्रमाण कहलाता है, वो प्रमाण ज्ञान है। ये जो द्रव्य श्रुत है वो प्रमाण ज्ञान है, तो हमने आगम से जाना क्योंकि वो केवली भगवान की वाणी है। दूसरा है अनुमान से जाना, ये दृष्टांत आदि देकर, अनुमान यानी वो लॉजिक देकर उसको हमने अनुमान से भी जाना कि हाँ ये ठीक बैठता है। और फिर क्या है? युक्ति से जाना, यानी जो न्याय देते हैं, लॉजिक देते, हेतु देते, उसके द्वारा भी ये सिद्ध हो जाता है। वे यह भी स्पष्ट जानते हैं कि किस द्रव्य की कौन सी पर्याय कब, अकेला कब नहीं, और कौन सी विधि से। देखो सारी बातें आ गई, पहले तो किस द्रव्य की कौन सी पर्याय कब, यानी काल भी आ गया, कौन सी विधि से, यानी वो पूर्व के सारे ही पर्याय उसमें आ गई, अनंत पूर्ववर्ती सारी पर्याय, जो 100वें नंबर पर कार्य होना है तो उसके पहले की सारी जितनी पर्याय है उसके पूर्ववर्ती पर्याय, वो भी क्रम निश्चित है, पूर्व पर्यायों का क्रम भी निश्चित है, तो उसको भी जानते हैं। और किस निमित्त पूर्वक और कैसी होगी, यानी वो पर्याय तो होगी परंतु वो उस पर्याय का स्वरूप भी कैसा होगा, उसमें कितने अविभाग प्रतीक्ष हो गए, वो क्या क्या है उसका, वो सारा डिटेल्स भी जानेंगे। और हम मात्र यह जानते हैं कि प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय का द्रव्य क्षेत्र काल भाव व निमित्त सब कुछ निश्चित है, पर यह नहीं जानते कि किसका कब क्या कैसे होगा। ये दोनों में डिफरेंस ख्याल में है? केवली भगवान तो प्रत्यक्ष जानते हैं किसका कब कैसे क्या होगा, कौन सा निमित्त होगा, कैसे कौन सी निश्चित पर्याय होगी, और हम क्या जानते हैं कि जो जो होगा उसका सारा ही निश्चित है, इतना ही हम जानते हैं। परंतु वो क्या निश्चित है इसके बारे में हम जानते नहीं कुछ। भविष्य की पर्याय भी क्रमबद्ध ही होती है, यह ज्ञान होने पर भी, यह हमें ज्ञान हुआ ना कि भविष्य के भूतकाल की तो हो चुकी, वो तो निश्चित है ही है, परंतु उसमें तो अभी कोई चेंज नहीं कर सकते, इतना तो हर एक को पता है कि जो बीत चुका है उसको क्या परिवर्तन करना, परंतु परिवर्तन कहाँ हो सकता है इसकी गुंजाइश लगती है भविष्य में। तब हमको पता चला कि भविष्य की भी पर्याय क्रमबद्ध ही होती है, यह ज्ञान होने पर भी। यदि हमें यह ज्ञान नहीं है कि किसके बाद कौन सी पर्याय होगी तो इससे वे अक्रमबद्ध कैसे हो जाएगी, यानी हमने तो इतना ही जाना कि क्रमबद्ध है, अभी कौन सी पर्याय कब होने वाली है ये तो नहीं जानते, तो ये नहीं जानने के कारण वो अक्रमबद्ध नहीं हो जाते। यह हमारी ज्ञान की अभी अधूराश है कि हम उसे नहीं जान रहे हैं, इस कारण उसमें परिवर्तन करने जैसा है या परिणमन कोई अन्यथा परिणमन कर सकता है, यह बात वहाँ रहती नहीं। वस्तु तो जिस पर्याय रूप से परिणमेगी उस पर्याय रूप से तो परिणमेगी ही, हम नहीं जानते और अन्यथा परिणमाना चाहते हैं तो भले ये हमारे मान्यता के अनुसार परिणमेगी कि जो योग्यता है उसमें वही पर्याय होगी, तो उसका सारा ही निश्चित है। तो हमें यह ज्ञान नहीं है कि किसके बाद कौन सी पर्याय होगी, तो इससे वे अक्रमबद्ध कैसे हो जाएंगी, जिससे हम यह कह सके कि हमारे ज्ञानानुसार पर्याय अक्रमबद्ध होती है, यानी वो हमारे ज्ञानानुसार अक्रम होती ही नहीं है। इससे तो हमारी अज्ञानता ही सिद्ध होती है, पर्यायों की अक्रमबद्धता नहीं। देखो अपनी मान्यता से अपना ही अज्ञान खुला हो जाता है। अब प्रश्नकर्ता जब जब प्रश्न करता है तो उसके प्रश्न में पता चल जाता है कि इसका अज्ञान कहाँ छिपा हुआ है। इससे तो हमारी अज्ञानता ही सिद्ध होती है, पर्यायों की क्रमबद्धता नहीं। हमें अपने अज्ञान को पर्यायों पर थोपने का क्या अधिकार है? हम अपना है तो यहाँ अज्ञान और अन्य वस्तु को थोपना चाहता है कि नहीं नहीं ये मेरी इच्छा के अनुसार ऐसे ही परिणमेगी या ये अक्रम ही है मैं इसे पलटा कर दिखा दूंगा, ऐसा मानता है ना, तो ये अज्ञान प्रकट हो जाता है उसका। जरा विचार तो करो, रविवार आदि 7 वारों का एक क्रम निश्चित है, संडे मंडे ट्यूजडे है ना, रविवार सोमवार मंगलवार, ये सारा क्रम निश्चित है। कुछ व्यक्तियों को उनके क्रम का ज्ञान है, वे अच्छी तरह जानते हैं कि किस वार के बाद कौन सा वार आता है, वो बार के बाद हुआ है ना, वार के बाद यानी रविवार के बाद कौन सा वार आएगा ये उसको पता है, जो जानता है। छोटा बच्चा होगा तो वो कुछ नहीं जानता है, और यह भी जानते हैं कि भविष्य में भी इसी क्रम से ये वार आवेंगे, यानी अब से 100 साल बीत जाने पर रविवार के बाद कौन सा होगा, सोमवार ही होगा। भले अभी हमारे कितनी वो मिलेनियम आया ना, 2001 चल रहा है, तो 2000 वर्ष पहले भी रविवार के बाद सोमवार ही आता था, और अब भी रविवार के बाद सोमवार, और भविष्य में भी वही क्रम रहेगा। पर कुछ लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं है। अब ये छोटी रिया है यहाँ खेलती थी, उसको तो ज्ञान नहीं ना रविवार के बाद कौन सा वार आता है, उसको पता नहीं है। तो क्या जिन लोगों को ज्ञान है उनके ज्ञानानुसार वार क्रमबद्ध होंगे, और जिन्हें ज्ञान नहीं है या गलत ज्ञान है उनके ज्ञानानुसार वे अक्रमबद्ध या अनिश्चित हो जाएंगे? उनको उस संबंधी ज्ञान नहीं है इसलिए वो अक्रम तो नहीं हो जाएंगे, जो उनका क्रम है वह तो निश्चित है। मुझे विश्वास है यह बात आपको भी स्वीकार न होगी, क्योंकि उनके ज्ञान अज्ञान या गलत ज्ञान का वारों पर क्या असर होने वाला है, वे तो अपने निश्चित क्रमानुसार ही होंगे। उसी प्रकार पर्यायों की क्रमबद्धता रूप वस्तु स्थिति को केवली के ज्ञान और क्षयोक्षम ज्ञान वालों के ज्ञान या अज्ञान से क्या अंतर पड़ता है, वे तो जैसी है वैसी ही रहेंगी। इसमें जैसे हम कहते हैं केवली ने जाना इसलिए होना पड़ेगा, अभी हमने जाना रविवार के बाद सोमवार आता है इसलिए उसको वैसा आना पड़ेगा, यदि वो तो ज्ञान तो उसको जानने वाला है, बस हमने जाना तो उसका पुरुषार्थ कहाँ रहा अभी वो काल का कि रविवार के बाद सोमवार ही क्यों आएगा, वो पराधीन होगा क्या? ऐसा तो उसकी अपनी स्वतंत्रता से रविवार के बाद सोमवार फिर मंगलवार फिर बुधवार ऐसा चल रहा है, और हम भी अपनी स्वतंत्रता से उसको पहले या बाद में भी जान लेते। वैसे केवली भी सारी ही पर्यायों को एक समय में जान लेते, वो उनकी विशेषता है। वस्तु भी अपने स्वयं के कारण परिणमती अपने अपने यथायोग्य पर्याय में, वो उसकी वस्तु की विशेषता है। दोनों ही एक दूसरे से पराधीन नहीं है, ये ज्ञान की योग्यता है कि ज्ञान जानता है, और ये वस्तु की योग्यता है कि वस्तु उस रूप परिणमती है। कोई किसी के अधीन नहीं परिणमता, यानी हम भी हमारे पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्त करेंगे। केवली भगवान ने जाना है कि इस जीव को कब मोक्ष मिलेगा, इसलिए हम पराधीन नहीं हुए, इसलिए हमारा पुरुषार्थ पराधीन नहीं हुआ। ज्ञान अज्ञान अल्प ज्ञान पूर्ण ज्ञान मिथ्या ज्ञान की स्थितियों से वस्तु की स्थिति का कोई संबंध नहीं है, यानी भले ज्ञान उसको जाने या नहीं जाने, वो ज्ञान हो या अज्ञान हो, पूर्ण ज्ञान हो या अल्प ज्ञान हो या मिथ्या ज्ञान हो, वो ज्ञान उस रूप परिणमता है, इसलिए वस्तु स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ता। वस्तु तो अपने यथायोग्य परिणाम से परिणम ही रही है, ये तो ज्ञान अपनी योग्यता से मिथ्या या सम्यक या परिपूर्ण या अल्प ज्ञान ऐसे परिणम रहा, तो उसके और ये अन्य वस्तु का कोई संबंध नहीं है, उनसे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि वस्तु की जो स्थिति है उसके अनुसार ही ज्ञान जानता है, अर्थात उसे जो सही जानता है वह सही ज्ञान है। यानी वस्तु स्थिति के अनुसार ज्ञान जानता है ने, वस्तु में भी ये ऐसी पर्याय हो रही है या होने वाली है और ज्ञान भी वैसे ही जानता है। तो देखो वस्तु में पर्याय होती है इसलिए ज्ञान में जाना ना, ऐसी भी पराधीनता नहीं है। तो उसमें क्या एक बात क्या बताई अभी कि जैसी पर्याय होती है या जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसे जो ज्ञान जानता है उस ज्ञान को हम सही ज्ञान कहते हैं। वस्तु में जितनी सारी पर्याय हूँ सबको एक साथ जाना उसको हम कहेंगे केवल ज्ञान। अभी सबको नहीं जानता है वो हुआ सूक्ष्म ज्ञान। अभी जैसे वस्तु की स्थिति है वैसा जानता है वो गया सही ज्ञान, उसको हम सम्यक ज्ञान कहेंगे क्योंकि जैसी वस्तु स्थिति है वैसे जानता है। और अगर कोई नहीं जानेगा अन्यथा मानकर अन्यथा जानता है, वस्तु को विपरीत जानता है या उसको संशय वाला जानता है या कोई निर्णय नहीं ऐसा अनुद्योषा है ऐसा जानता है तो उसको कहते हैं वो तो गलत ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। परंतु यह ज्ञान का परिणाम अपने कारण है, वस्तु का परिणाम या वस्तु में जो स्थिति है वो उसके अपने कारण है। तो उसको जो सही जानता है यानी ये जो वस्तु का स्वरूप है उसको जो सही ज्ञान जानता है वह सही ज्ञान है। जो पूर्ण जानता है वह पूर्ण ज्ञान है, जो अपूर्ण जानता है वह अपूर्ण ज्ञान है, और जो मिथ्या जानता है वह मिथ्या ज्ञान है, और जो नहीं जानता है वह अज्ञान है। ख्याल में ना, ये वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा जानने वाला सही ज्ञान, परिपूर्ण जानता है वस्तु को तो ये परिपूर्ण ज्ञान। ज्ञान तो ज्ञान है, वो वस्तु को कैसे जानता है उसके अनुसार उसको अलग अलग नाम पड़े। अतः यह कहना कि केवली के ज्ञान के अनुसार पर्याय क्रमबद्ध होती है और हमारे ज्ञान के अनुसार अक्रमबद्ध। क्रमबद्ध पर्याय का सही स्वरूप समझे बिना ही मैं भी सही और तू भी सही जैसी उभयाभासी बाल चेष्टा है अनेकांत नहीं। इसको कहते हैं अनेकांत का दुरुपयोग। अनेकांत शब्द हाथ में आ गया ना, तो क्या ये भी सच्चा और ये भी सच्चा, ये अनेकांत नहीं होता। वस्तु है भी और नहीं भी, परंतु ये अपेक्षा लगाते हैं। वस्तु ही है वस्तु ही नहीं है कैसे, क्योंकि अपेक्षा है और पर की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि अपेक्षा भी है और पर की अपेक्षा भी है, ये अनेकांत नहीं है। हाल में आता है वस्तु द्रव्य अपेक्षा भी नित्य है और पर्याय अपेक्षा भी नित्य है, नित्य काम है ये। ऐसे दो अपेक्षा लगाना ये गलत हुआ। पर्याय अपेक्षा तो अनित्य है, तो वस्तु को द्रव्य अपेक्षा भी नित्य पर्याय अपेक्षा भी नित्य कहेंगे वो तो झूठा अनेकांत होगा, अज्ञान है वो सही नहीं है। ऐसे कहते ना वेदांत कहते कि वस्तु सर्वथा नित्य है, बौद्ध कहते कि वस्तु सर्वथा क्षणिक है, और जैन कहते कि स्यात् नित्य स्यात् अनित्य। तो देखो वेदांत और बौद्ध मिलकर जैन हुआ कि नहीं हुआ, क्यों पुष्पावे नहीं हुआ, क्यों? एक ये झूठ है वेदांत, एकांत तो मिथ्यावाद है ना उनका, और दूसरा भी झूठ है, तो दो झूठ मिलकर एक सत्य होगा ना, तो इसको अनेकांत नहीं कहते। अनेकांत यानी अपेक्षा से कि ऐसा है और ऐसा नहीं है, वस्तु जैसी है वैसी है बताना, जैसी नहीं है वैसी नहीं है, ऐसी भी है और ऐसी भी ऐसा नहीं उसमें लगता, नित्य भी है और अनित्य भी, वो अपेक्षा सहित कहेंगे तब वो सच्चा अनेकांत होगा। ख्याल में आता है यहाँ क्या बताना चाहते कि केवल ज्ञानी की अपेक्षा क्रमबद्ध है और हमारी अपेक्षा अक्रमबद्ध है, ऐसे ये गलत झूठी अपेक्षा लगाकर झूठा अनेकांत नहीं हो सकता। इसको कहते उभयाभासी, दोनों ही तरफ से आभास है उसका, अज्ञान है। उभयाभासी बाल चेष्टा है, क्योंकि एक शब्द हाथ में है ना अनेकांत, तो लगा दिया कहीं भी, इसको बाल चेष्टा करिए। जयपुर खानिया तत्व चर्चा में सम्मिलित दोनों पक्षों के सभी दिग्गज विद्वानों ने एक मत से यह स्वीकार किया है कि प्रत्येक कार्य स्वकाल में ही होता है। इस बात का उल्लेख जयपुर खानिया तत्व चर्चा में इस प्रकार मिलता है। ये खानिया तत्व चर्चा पता है ना, अनेक विद्वानों के बीच में हुई, दो पक्ष पड़े थे, ये सारे जो निमित्त से ही कार्य होता है ऐसा ऐसे बहुत जो विरोध चलता है ना, कोई विद्वान एक बाजू और ये फुलटन सिद्धांत शास्त्री आदि जो विद्वान है जैनी में, अन्य नहीं, जैनियों में ही दो पक्ष, जो अपने को हम व्यवहार वाले हैं आप निश्चय वाले ऐसे जो कहते थे वो ऐसे उनके दो पक्ष पड़े थे। और ये खानिया तत्वचर्चा नाम का पुस्तक प्रसिद्ध है, ऐसे खाली बोली में नहीं, ऐसी तत्वचर्चा नहीं थी, लिखित में देना, अपना अपना पक्ष लिखित रूप से वहाँ लिखना। जयपुर में हम जाते हैं, वो चूलगिरी में जाते हैं, वो नीचे खानिया का मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, बहुत सुंदर है और बहुत बड़ा हॉल है, और वहाँ ये बैठकर सारी चर्चाएं हुई थी। ये सारा लिखित रूप में चलता था, ये अपना प्रश्न और अपना उत्तर लिखित ले लो, उसमें सही करनी चाहिए, क्योंकि बाद में कह देना हमने तो ऐसा बोला ही नहीं था। क्यों देवेंद्र भाई, पहले कोई विधान करे और बाद में हमने ऐसा नहीं, हमने तो ऐसा कर, ऐसा नहीं, वो लिखित लिखो, फिर बाद में बदलना नहीं चाहिए, ऐसी वहाँ कंडीशन थी। वो सारा लिखित रूप से है अभी, यानी उसकी पुस्तकें भी प्रसिद्ध हैं। ये भूल जाते किसका क्या पढ़ रहे थे, और इसमें एकदम बारीकी जिसमें होती ना, अभी जैसे हम देखते हैं पंचाध्याय में जो चल रहा है विषय, गुण द्रव्य के साथ में रहता है कि नहीं रहता, हाँ पुष्प भी रहता है ना, हाँ तो द्रव्य के साथ में रहता है कि नहीं रहता, ये द्रव्य है और ये गुण है, तो ये गुण द्रव्य के साथ रहता है कि नहीं रहता, आत्मा है अभी अपना ज्ञान गुण आत्मा के साथ रहता है कि कैसा है। देखो द्रव्य तो पूरा है, अभी इसके साथ और कौन सा गुण रहेगा, द्रव्य स्वयं गुणमय है, यानी उसके द्रव्य के साथ और कोई गुण नहीं रहते, ख्याल में नहीं। ऐसे जो प्रश्न होते हैं बारीकाई के, अभी स्टार्टिंग में तो हमने कहा गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, गुण द्रव्य में रहते हैं, ऐसे ऐसी सारी बातें हमने प्राथमिक स्टेज पर सीखे, अभी उसकी जो बारीकाई है उसको भी पंचाध्याय में सीख रहे हैं ना शाम को, तो ये ऐसी ऐसी बातें उसमें आती है। यहाँ तो स्थानीय तत्व चर्चा में निमित्त आदि की बहुत चर्चा हुई थी, निमित्त करता है कि नहीं है, उनका सारा जो निमित्त पर होता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, फिर ये तो करते हुए दिखता है, ये ऐसी ऐसी सारी चर्चा है। अभी यहाँ क्या क्या उसमें लिखा है उन्होंने, उस तत्व चर्चा में से कुछ अंश यहाँ लिखा है, उसको देखते हैं। अपर पक्ष यानी वो दूसरा विरोधी पक्ष, अपर पक्ष द्वारा प्रत्येक कार्य का स्वकाल में होना स्वीकार, इसका प्रारंभ करते हुए अपर पक्ष ने सर्वप्रथम हमारे द्वारा प्रथम और द्वितीय उत्तर में उल्लिखित जिन पांच आगम प्रमाणों के आधार से यह स्वीकार कर लिया है कि प्रत्येक कार्य स्वकाल में ही होता है, इसकी हमें प्रसन्नता है। हमें विश्वास है कि समग्र जैन परंपरा इसमें प्रसन्नता का अनुभव करेगी, क्योंकि प्रत्येक कार्य स्वकाल में ही होता है, यह तथ्य एक ऐसी वास्तविकता है जो जैन धर्म और वस्तु व्यवस्था का प्राण है। इसे अस्वीकार करने पर न तो केवल ज्ञान की सर्वज्ञता ही सिद्ध होती है और न ही वस्तु व्यवस्था के अनुरूप कार्य कारण परंपरा ही सुगठित हो सकती है, यानी सब में मिलकर बाद में मान लिया हाँ ये सच है कि ये प्रत्येक कार्य जो स्वकाल में ही गठित होता है। अपर पक्ष ने प्रतिशंका तीन में जिन शब्दों द्वारा स्वकाल में कार्य का होना स्वीकार किया है वे शब्द इस प्रकार है। यह हम जानते हैं कि जिनेन्द्र देव को केवल ज्ञान के द्वारा प्रत्येक कार्य के उत्पन्न होने का समय मालूम है, कारण कि केवल ज्ञान में विश्व के संपूर्ण पदार्थों की त्रिकालवर्ती समस्त पर्यायों का केवल ज्ञानी जीवों को युगपत ज्ञान कराने की सामर्थ्य जैन संस्कृति द्वारा स्वीकार की गई है। उसी आधार पर यह बात भी हम मानते हैं कि प्रत्येक कार्य की उत्पत्ति उसी काल में होती है जिस काल में है, उसकी उस उत्पत्ति का होना केवल ज्ञानी जीव के केवल ज्ञान में प्रतिभासित हो रहा है, ऐसे उन्होंने भी स्वीकार किया अपर पक्ष। दूसरा, केवल ज्ञान ज्ञापक है कारक नहीं, ज्ञापक यानी वो ज्ञान करने वाला बताने वाला, बताने वाला ऐसा ले लो, वो ज्ञापन शब्द कभी सुना है आपने इसके पहले? हाँ, विज्ञापन, विज्ञापन आता है ना, एडवर्टाइजमेंट बताते हैं ना, वो वैसे ज्ञापक है, ये कारक करने वाले नहीं है, उन्होंने जाना इसलिए वो हुआ ऐसा नहीं है। देखो, साथ ही उक्त पक्ष की स्वीकृति के बाद अपर पक्ष की ओर से जो यह भाव व्यक्त किया गया है कि परंतु, उसमें लिखा ना उन्होंने, अभी अपर पक्ष ने क्या लिखा है, परंतु किसी भी कार्य की उत्पत्ति जिस काल में होती है उस काल में वह इस आधार पर नहीं होती है कि उस काल में उस कार्य की उत्पत्ति का होना केवल ज्ञानी के ज्ञान में प्रतिभासित हो रहा है, यानी केवल ज्ञानी ने जाना इसलिए उस काल में होता है ऐसा नहीं है, क्योंकि वस्तु की जिस काल में जैसी अवस्था हो उस अवस्था को जानना मात्र केवल ज्ञान का कार्य है, उस कार्य का होना केवल ज्ञान का कार्य नहीं है। केवल ज्ञान ने जाना बस, वो कार्य का होना तो वस्तु के अधीन है, कार्य का होना केवल ज्ञानी के अधीन नहीं है। तो यह कथन भी आगम परंपरा के अनुरूप होने से स्वीकार करने योग्य है, किंतु अपर पक्ष के इस कथन में इतना हम और जोर देना चाहेंगे, अभी इसमें और डाला इन्होंने कि उनको क्या लिखना चाहिए था कि जिस प्रकार जिस काल में जो कार्य होता है उसे केवल ज्ञान यथावत जानता है, उसी प्रकार उसकी कारक सामग्री को भी वह जानता है। अकेला जब होना इतना ही नहीं, वस्तु में होना होगा कार्य इतना ही नहीं, परंतु उसकी कारक सामग्री, उसके सभी कारण, सभी कारण में कितने कारण लेना, हाँ, पांचों समवाय, यहाँ समवायों के बारे में, सभी कारक उसके उपलब्ध हो गए, यानी उसका निमित्त भी, उसका पुरुषार्थ भी, उसका सारा काल भी, होना तो सब जानते हैं। केवल ज्ञान किसी कार्य का कारक न होकर ज्ञापक मात्र है, इसमें किसी को विवाद नहीं। ये जयपुर खानिया तत्व चर्चा वो प्रथम भाग में है, उसके दो ऐसे भाग है जाड़े जा रहे हैं, जयपुर खानिया तत्व चर्चा। इस उल्लेख से यह तो सिद्ध हो ही जाता है कि प्रत्येक कार्य सकाल में ही होता है, यह एक सर्वमान्य तथ्य है। अब रही बात अनेकांत की, तो भाई अनेकांत वस्तु के स्वरूप में सहज ही घटित होता है, उसे घटित करने के लिए वस्तु स्वरूप को बलात् विकृत करने की आवश्यकता नहीं है। केवल ज्ञानी ने जाना और हमने नहीं जाना, इसलिए वो वस्तु में वैसा अनेकांत नहीं है कि क्रमबद्ध है भी और नहीं भी है, ऐसा नहीं है। पर्याय क्रमबद्ध ही होती है और क्रम नहीं, और गुण अक्रम ही होते है क्रम से नहीं, ये वो अनेकांत। देखो, कल ये बात आई थी, गुणों को क्या नाम दिया था कल शाम को पंचाध्याय में, हाँ इंदुबेन, हाँ सहभुवि, सहभुआ, हाँ ऐसा नाम आएगा, देखना है सहभुवि, हाँ सह, सहभावी तो हिंदी में कहेंगे हम, क्रमभावी और सहभावी तो मूल संस्कृत शब्द था ना, सहभुवा सहभुवाहा, तो स्वभावी भी हम कहते हैं, और पर्याय क्रमभावी। तो गुण अक्रम होते हैं, यानी अक्रम ही होते हैं, और पर्याय क्रमबद्ध ही होती है, ये हुआ सच्चा अनेकांत। पर्याय ही अक्रम होती है और पर्याय ही क्रमबद्ध होती है, ये हुआ झूठा अनेकांत। ख्याल में आया ना, आपके ख्याल में आता है कुछ? देखो, पर्याय एक के बाद एक होती है और वो निश्चित क्रम के अनुसार होती है। अब जो गुण है, आम है, उसमें स्पर्श गुण, रस गुण, गंध गुण, वर्ण गुण है, वो एट अ टाइम है ना, एक साथ सारे के सारे हैं, वो क्रम से नहीं है। पहला कौन सा गुण आया आम में, स्पर्श वाला आया कि रस वाला आया कि गंध आया? हाँ, आम यानी जो विद्यमान है अभी, आम ये ज्ञान गुण, अभी आत्मा है, आत्मा में कौन सा गुण पहला होगा? ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीर्य, सुख, हाँ सब साथ है। वैसे आम में भी सारे गुण एक साथ है, तो ये कहते अक्रम है, एक के बाद एक नहीं आए, हमें कहने में क्रम लेना पड़ता है, क्योंकि वाणी की इतनी दुर्बलता है कि एट अ टाइम सब कथन नहीं हो सकता है, कथन एक पीछे एक होगा, परंतु गुण तो एक साथ है, क्योंकि अनादि है ना सारे, अनादि अनंत है, तो गुण तो अनादि है और एक साथ है, और उसमें जो पर्याय होती है वो क्रम 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 से होती है। तो गुण हुए अक्रम स्वभावी और पर्याय हुई क्रमभावी। तो यहाँ क्या कहते, देखो पर्याय क्रमबद्ध ही होती, ही लगाया, ये सम्यक एकांत है। पर्याय क्रमबद्ध ही होती है, अक्रम नहीं, और गुण अक्रम ही होते हैं, क्रम से नहीं। ये दो सम्यक एकांत हुए और दोनों का मिलकर एक अनेकांत हुआ, वो सम्यक हुआ। क्या लगता है कुछ? हाँ, यह विधि निषेध परक सम्यक अनेकांत है। विधि निषेध यानी उसका निषेध करना, नास्ति फील आउट करना, विधि यानी उसको एस्टेब्लिश करना, और निषेध यानी निषेध करना कि एक का विधि कैसे किए, पर्याय क्रमबद्ध है, और निषेध किसका किया, गुण अक्रम है, यानी गुण क्रमबद्ध नहीं है, अक्रम है, ऐसा विधि और निषेध किया। ये सम्यक अनेकांत है। इसे ही और अधिक स्पष्ट करे तो गुणों की अपेक्षा द्रव्य अक्रम है। अभी पूरे द्रव्य को ही कहा, पहले तो गुण अक्रम है और पर्याय क्रमबद्ध होती है, ऐसे कहा था। अब हम कहेंगे द्रव्य, एक ही वस्तु को क्रम और अक्रम कहना हमको। पहले वस्तु में भेद डालकर समझाया कि पर्याय क्रमबद्ध है और गुण अक्रम एक साथ है। अब द्रव्य काहे से बना है, गुण और पर्याय से। तो हम द्रव्य को ही क्रमवर्ती कहेंगे और द्रव्य को ही अक्रम कहेंगे। कैसे? कि पर्याय की अपेक्षा पूरा द्रव्य ही क्रमबद्ध है, क्रमवर्ती है। गुणों की अपेक्षा पूरा द्रव्य ही अक्रम है, पूरे द्रव्य पर घटित किया। देखो यहाँ, हाँ अनेकांत है। देखो गुणों की अपेक्षा द्रव्य अक्रम है, अक्रमणीय युगपत है, और पर्यायों की अपेक्षा क्रमबद्ध है। द्रव्य की जो पर्याय है उसके साथ द्रव्य को अभेद किया और हम अभी द्रव्य की ओर देख रहे हैं, तो वो द्रव्य ही अक्रम हुआ, ये द्रव्य ही क्रमबद्ध हुआ। एक एक पर्याय पलटी ना उसकी, पहले वो जीव मिथ्या दृष्टि था, पूरा द्रव्य लिया ना हमने, एक पर्याय के द्वारा पूरा द्रव्य लिया था, पूरे द्रव्य को मिथ्या दृष्टि कहा। अब यह द्रव्य यानी वो जीव द्रव्य अभी सम्यक दृष्टि हुआ, तो यह मिथ्या दृष्टि जीव पूरा द्रव्य, सम्यक दृष्टि जीव, वो एक साथ होंगे क्या, उसमें क्रम होगा, एक ही जीव की अपेक्षा बात चल रही है। जो मिथ्या दृष्टि जीव था वही द्रव्य पूरा लिया, और अभी एक समय बाद वो सम्यक दृष्टि जीव हुआ, वो द्रव्य में ही क्रम पड़ा, पूरा द्रव्य ही क्रमवर्ती क्रमवर्ती हुआ। किस अपेक्षा से? पर्याय की अपेक्षा। मिथ्या दर्शन पर्याय और सम्यक दर्शन पर्याय, अकेली पर्याय की बात करेंगे तो भी क्रम पड़ता है, क्रमवर्ती है ना वो, और पर्याय की अपेक्षा पूरा द्रव्य रहेंगे तो हम कहेंगे द्रव्य ही क्रमवर्ती हुआ। पर्याय की अपेक्षा से क्षणिक है और गुण की अपेक्षा से नित्य है, ऐसा नित्यात्मक है। ऐसा नहीं कि पर्याय की अपेक्षा से ही क्षणिक है और पर्याय की अपेक्षा ही नित्य, ऐसा नहीं कहा। अपेक्षा लगाकर उसमें नित्य अनित्य बताया। अब कहेंगे द्रव्य ही नित्य और अनित्य है, तो फिर उसमें नित्य किस अपेक्षा से, अनित्य किस अपेक्षा से, ऐसे अलग अलग अपेक्षा लगाकर। परंतु वो नित्य और अनित्य एक ही समय में है और एक ही वस्तु में है, ये ऐसे ही लगता है। हाँ, परंतु हमारा प्रयोजन अपने द्रव्य से है ना, इसलिए बार बार हम आत्मा पर घटित करते, क्योंकि हमें ये अन्य वस्तुओं जानने से इतना इंटरेस्ट नहीं है। वो जानते भी है इसलिए क्यों उनका इतना वर्णन आता है, क्योंकि ज्ञान उसको जानता है, इसलिए ज्ञान की तरफ से उनका वर्णन होता है कि हम तो जान रहे हैं ना, हम क्या क्या जान रहे हैं, तो उसमें गेयता भी वर्णन होगा। परंतु गेय की मुख्यता से गेयता वर्णन नहीं है, ज्ञान की मुख्यता से उसका वर्णन है, क्योंकि ये ज्ञान का स्वरूप है कि गेयों को जानना। तो हमारे ज्ञान में पुद्गले आती है सारी, तो पुद्गल का भी थोड़ा बहुत वर्णन आ जाएगा। इसलिए छह द्रव्यों का वर्णन तो है, क्योंकि ज्ञान तो जानता है ना, छह द्रव्य है इस विश्व में, छह द्रव्य है कि जाना किसने, ज्ञान ने जाना। तो इसे ये ज्ञान की मत है कि हमने विश्व का स्वरूप जान लिया, तो इसलिए ये छह द्रव्यों का स्वरूप बनते। परंतु अभी जिस जीव को अपने आत्मा का ही ज्ञान नहीं है, उसको अन्य जानने या न जानने से क्या फायदा। जो जानने वाले को ही नहीं जानता वो दुनिया भर की चीजें जाने तो भी उससे क्या, और जिसने जानने वाले को जान लिया उसको हमने जाने या नहीं जाने उससे क्या। जानने वाले को जान लिया बस उसमें सारा ही आ गया। वो जानने वाले को जानता रहेगा वो सर्वज्ञता प्रकट हो जाएगी, सारे विश्व की वस्तुएं उसमें झलकेगी। और हमारी रुचि कहाँ है? सर को जानने। एक जानने वाले को जानने में कोई रुचि नहीं। अरे वो तो पढ़ा है ना, अनादिका है, वो कहाँ जाएगा? पहले जरा गेय को तो जान लो, ये हट जाएगी सामने से तो क्या होगा, कब जानेंगे हम इसको? क्यों विश्वास होंगे? हाँ सच्चा लगता है ना। एक है ना, गुणों की अपेक्षा द्रव्य अक्रम है और पर्याय की अपेक्षा क्रमगत है। इस प्रकार गुण पर्यायात्मक वस्तु में पूरी वस्तु ली, वो कैसी है? गुण पर्यायात्मक है। क्रम अक्रम संबंधी अनेकांत घटित होता है, एस्टेब्लिश होता है। जैसा कि आत्मख्याति में, आत्मख्याति नाम सुना है ना भाई? आत्मख्याति में ये जो समय सार ग्रंथ सुना है, समय सार नाम का ग्रंथ का नाम सुना है, वो किसने लिखा है? आचार्य कुमकुंद। अभी उस पर ये जो अमृत चंद्र आचार्य है उन्होंने उसकी टीका यानी उसका विस्तार से विश्लेषण किया है, उसको कहते टीका। और उस टीका का नाम है आत्मख्याति, ये ग्रंथ का नाम है। ख्याति का अर्थ प्रसिद्धि होता है, परंतु यहाँ जो लिखा है आत्मख्याति में उसका अर्थ ये आत्मख्याति नाम का जो ग्रंथ है उसमें आचार्य, हाँ उसका नाम आत्मख्याति है। उसको समयसार कलश भी लिखते हैं। समयसार कलश को आत्मख्याति को एक ही बात है, और ये कलश टीका बात अलग है, वो राजमल जी ने लिखी वो अलग, उसको कहते समयसार कलश की टीका, नहीं कलश टीका कहते उसको। तो बहुत सारे अलग अलग ना, बनारसी दास ने आत्मख्याति का ही हिंदी ट्रांसलेशन यानी उसमें हूबहू उसी पर से लिया है सारा, उसका नाम है समयसार नाटक, गजब का है। उसमें तो ऐसे शब्द आसान शब्द में पूरा समयसार लिखे, पढ़ने जैसा है समयसार नाटक, बनारसी दास जी ने लिखा है। यहाँ वो क्या लिखते आचार्य क्रम, अभी इसको मैं छोड़ फोड़ गई तो डिवीजन करके पढ़ती हूँ तो जरा ख्याल में आएगा क्या करना चाहते। क्रम अक्रम प्रवृत्त विचित्र भाव स्वभावत्वात् उत्संगित गुण पर्याय, उसका अर्थ नीचे दिया है कि और वह समय, ये समयसार गाथा दो की टीका है, गाथा दो में समय शब्द का अर्थ बताया है। तो उसमें कहते हैं वो समय यानी आत्मा अथवा कोई भी द्रव्य, क्योंकि छह द्रव्यों को समय कहा है, और उसमें जो सार, छह द्रव्यों में मैं स्वयं सार हूँ, तो इसलिए वो छह द्रव्यों का सार है। तो जो जीव द्रव्य है आत्मा है उसकी चर्चा है, इसलिए समय सार लिख दिया। तो पहले तो छह द्रव्यों का सामान्य क्या स्वरूप है उसको बताया। तो समय यानी आत्मा अथवा कोई भी द्रव्य, क्रम रूप यानी पर्याय, और अक्रम रूप यानी गुण प्रवर्तमान अनेक भाव जिसका स्वभाव होने से जिसने गुण पर्यायों को अंगीकार किया है ऐसा है। क्या कहते, कोई भी द्रव्य पर्याय और गुण रूप जो अनेक भाव है वह जिसका स्वभाव है ऐसा, वो जो द्रव्य है उसने गुण और पर्यायों को अंगीकार किया है, वो गुण और पर्यायों का ही समूह द्रव्य है। यानी भाषा ऐसी ऐसी अटपटी है ना, तो पहले पहले उसको पता ही नहीं चलता क्या कहना चाहते। हम तो सीखे ना गुण पर्यायवत द्रव्य, उसी को यहाँ लिखा है। यहाँ पर वस्तु को गुण पर्यायात्मक कहा है, आत्मक यानी उसी से बनी हुई वाली नहीं, जैसे चश्मे वाला यानी वो चश्मा अलग है और यह अलग है पर्सन, वैसा नहीं है। गुण पर्यायात्मक कहा यानी उसी रूप है, वो गुण पर्याय का समूह ही द्रव्य है, तथा गुणों का स्वभाव अक्रम वो पर्यायों का स्वभाव क्रमवर्ती कहा है। यानी द्रव्य है वो गुण पर्यायात्मक है। अब गुण कैसे है? अक्रम है। पर्याय कैसी है? क्रमवर्ती है। यदि पर्यायों में ही क्रम अक्रम गठित करना अभिष्ट हो तो वह अपेक्षा दूसरी हो। क्या कोई मुझे अपेक्षा समझाएगा? हाँ अंगीकार कर रहे हैं, द्रव्य ने अंगीकार किया नहीं कि उसी से द्रव्य बना हुआ है। ये भाषा जरा उनकी वो संस्कृत का ट्रांसलेशन है ना, इसलिए अटपटी लग रही है। अभी यहाँ जो लिखा है कि पर्याय में ही क्रम और अक्रम घटित करना है, तो कैसे करोगे? हाँ हाँ, वो हुआ क्रम। अक्रम यानी एट अ टाइम, एक समय वो तो क्रम होगा, अनादि अनंत सारे क्रम 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 से होती है। पर्याय आगे नहीं पढ़ना, आगे मत जाओ, मैंने भी आगे नहीं पढ़ा है। हाँ इधर समझो ना जरा जल्दी, समझना हो अंदर से समझो, क्योंकि मैंने प्रश्न पूछा है उसके ऊपर विचार करके आप स्वयं ट्राई करोगे तो अधिक समझेंगे। हाँ पर पर्याय अक्रम भी है ऐसा इन्होंने कहा, तो अभी उसको कैसे सिद्ध करेंगे? हाँ देखो, ज्ञान की एक पर्याय, दर्शन गुण की एक पर्याय, चरित्र गुण की एक पर्याय, ये सभी पर्याय अलग अलग गुणों के पर्याय एट अ टाइम है कि नहीं है? एक ही समय में। अभी ज्ञान की अकेली पर्याय देखिए तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक एक गुण की पर्याय एक के बाद एक आती है, और अनंत गुणों की एक एक पर्याय अभी वर्तमान में विद्यमान है, बराबर, कि वो भी एक के बाद एक होगी। अनंत गुण एक साथ एक प्रत्येक समय में अनंत गुण परिणमित हो रहे हैं, अपने अपने कार्य रूप से परिणमित होते हैं, तो वो सारी पर्याय हम कैसे कहेंगे? अक्रम है या स्वभावी है, स्वभावी है कहेंगे। देखो यहाँ क्या कहते हैं, देखो कोई भी वाक्य आता है तो उसके ऊपर पहले हम अपनी कल्पना से सोचे। अभी हम सुबह सीखते नहीं आओ सपना सार वगैरह ने गुमर सार, तो उसमें भी कोई गणित आता है या कुछ भी आता है तो पहले हम अपने बुद्धि से ऊपर विचार करते हैं क्या ये सही है, फिर उसमें देखेंगे। तो यह समझाना, इससे कोई नहीं कार्य करेगा, उस पर अपना यहाँ बुद्धि का विचार, ये युक्ति द्वारा वगैरह आता है नहीं, तो इसी तरह से शास्त्र को पढ़ना है हमको। देखो यहाँ कहा ना कि क्रम अक्रम घटित करना अभिष्ट हो, यानी अगर आप चाहते हैं कि पर्यायों पर ही क्रम और अक्रम घटित करो, अभिष्ट यानी आपकी इच्छा हो तो, घटित करना अभिष्ट हो यानी घटित करना अगर आप चाहते हो तो वह अपेक्षा दूसरी होगी। प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण है और प्रत्येक गुण की प्रति समय एक पर्याय होती है, इस अपेक्षा प्रत्येक द्रव्य में एक समय में ही अक्रम अर्थात एक साथ अनंत पर्याय हो जाती है। प्रत्येक गुण की एक एक पर्याय, ऐसे एक समय में अनंत पर्याय वो एक साथ है, तथा एक गुण की अनंत समयों में अनंत पर्याय होती है, अनादि अनंत एक गुण में अनंत पर्याय वे क्रमशः एक एक समय में एक एक ही होती है, यानी एक एक गुण की अनादि अनंत पर्याय क्रम से होती है, अनंत गुणों की अपनी अपनी एक एक पर्याय जो है वो एक साथ होती है। इस प्रकार पर्यायों को भी क्रम अक्रम कहा जा सकता है, पर ध्यान रहे इस अपेक्षा क्रम अक्रम मान लेने पर भी क्रमबद्ध पर्याय में चर्चित पर्यायों की क्रम नियमितता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये जो क्रम नियमितता है हरेक द्रव्य में होने, हरेक गुण में होने वाली एक एक पर्याय निश्चित क्रम से अपने अपने समय के अनुसार अपने अपने समय पर होगी, निश्चित विधि से होगी, वहाँ वो उसका निमित्त भी डेफिनेट है, यानी ये सारा ही निश्चित है। निश्चितता की ओर हमारा ध्यान लगा रहे, क्योंकि हमें तो आकुलता है ना पर को परिणमाने की, तो जब पर के और अपने भी कार्य निश्चित होने वाले हैं, तभी कार्य की तरफ लक्ष्य ही देना नहीं रहा। वस्तु में दो अंश है, कौन सा?
एक हाँ परिणाम, ये परिणाम और उसका ये कायम रहने वाला अंश। अब ये परिणाम जो है कायम रहने वाला तो अंश एक जैसा ही, एक सदृश सदैव एक से, और ये बदलने वाला कुछ न कुछ परिवर्तन हो रहा है। अब ये परिवर्तन हो रहा है इसकी तरफ देखते हैं तो राग की उत्पत्ति होती है कि अभी ऐसा है वैसा है, वैसा ये करना चाहिए वैसा वैसा। अभी ये तो निश्चित हो गया हमारे ज्ञान में, हमारे ज्ञान में निश्चित हो गया कि ये जो पर्याय है वो अपने क्रम से निश्चित क्रम से होगी। हमारी अपनी भी सारे ही पर्याय सुनिश्चित है, तो इसकी तरफ हमने देखना छोड़ा। और ये जो सामान्य अंश जिसको कहते ध्रुव अंश है, क्योंकि वो तो एक सदृश है, उसकी ओर देखने से हमें कोई विकल्प वगैरह ऐसे नहीं रहते, और यही मैं हूँ ऐसा मान लेता। और ये इसको तो हमने गौण कर लिया, वो है इसके साथ ही है, इसको अलग नहीं काट कर फेंका नहीं, उसको उसको गौण करके लक्ष्य किसका किया, जो एक सदृश सामान्य अंश है ध्रुव अंश है, तो उसकी ओर यानी वो हमारा देखने का विषय फिक्स हो गया ना। पहले पर्याय तो एक एक समय में चेंज होती थी, तो चेंज ऐसे ऐसे जो हिलने वाली चीज को देखो आप, तो हमारी आंखें भी ऐसे ऐसी घूमती ना, ट्रेन में जाते हैं तो पेड़ों की तरफ देखो बाहर, तो अपनी आंखें भी ऐसे ऐसी घूमती रहती, और स्थिर विषय को देखो तो आंखें भी स्थिर रहती। वैसे हमको जो स्थिर एक सदृश जो है ना ध्रुव जिसको कहते हैं, उसको जानना है। अब जानने वाली पर्याय स्वयं अध्रुव है, तो ध्रुव को जानने वाली वो पर्याय को भी ध्रुव कहते, क्योंकि उसका विषय ध्रुव है, उसका विषय एक सदृश है, इसलिए वो पर्याय भी ध्रुव वैसी हो जाती है। हमको कहते हैं उसको ध्रुव ने वैसा का वैसा जानती रहती ना, वो नई नई पर्याय उसी वो एक सदृश विषय को जानती रहे। ये जरा अलग टॉपिक है, थोड़ा डिफिकल्ट है, इसमें ज्यादा चर्चा में नहीं जाएंगे अभी। तो यानी जिसको जानना है वो ध्रुव वस्तु होगी, तो ये जो पर्याय जो है उसमें वो राग द्वेष भी उत्पन्न नहीं होगा। तो उसको कहते एकाग्र चिंता निरोध ध्यान का ना, उसको उसी को जानते रहना एक वस्तु को। पर्याय ध्रुव है ना, वो ध्रुव का है ना अचल, उसको क्यों कहते हैं अभेद रूप से हम कहेंगे उसको, द्रव्य के साथ वो अभेद हो गए। ध्रुव है ने वो पर्याय वही की वही कायम रहती है, ऐसी बात नहीं है। सिद्ध भगवान की पर्याय को ध्रुव कहा मालूम है आपको, समय सार में सिद्ध भगवान जो केवल ज्ञान है उनको कहते हैं आप ध्रुव हो गए पर्याय में, क्यों वैसी की वैसी पर्याय चलती रहती है। प्रवाह पे क्यों है, तो उनकी एक एक केवल ज्ञान की पर्याय अलग अलग, परंतु जब से केवल ज्ञान प्रकटा तब से वो केवल ज्ञान पर्याय ही चल रही है। यानी केवल ज्ञान केवल ज्ञान केवल ज्ञान केवल ज्ञान। अभी हमारा ज्ञान कैसा है, कभी ज्यादा कभी कम कभी विपरीत हो जाता है ना, ऐसा ज्ञान में हीनाधिकता होती है, क्षोभम ज्ञान में हीनाधिकता चल रही है, और उनका ज्ञान परिपूर्ण है और वैसा का वैसा रहेगा। तो उनकी पर्याय को भी ध्रुव कह दिया, वो कहने की अपेक्षा है। ऐसे ध्रुव नहीं कि पर्याय प्रकट हुई अभी निरंतर परिणमन रूप गया, वैसा ध्रुव नहीं। तो जो एक सदृश ध्रुव वस्तु को जानती है, तो पहले वो चेंज होती थी ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसको जानो के उसके जानो को उसके जानो, और उसमें राग द्वेष होते थे, विकल्प उठते थे। अभी जो ध्रुव वस्तु को जानने में लग गया ज्ञान, तो उसमें वो राग द्वेष के परिणाम वो राग के विकल्प नहीं उठेंगे। एक सौ छह पेज पर इस प्रकार का कथन तत्वार्थ राजवार्तिक में आता है। ये जो तत्वार्थ सूत्र है उसके ऊपर ये टीका है। जैसे वहाँ सूत्र कहते हैं, वहाँ इसमें जो जो ऐसे संस्कृत के वाक्य आते हैं उसको वार्तिक कहते हैं। तो ये तत्वार्थ राजवार्तिक ये इस ग्रंथ का नाम है, उसमें आता है जो कि इस प्रकार है। सच पर्यायो युगपत वृत्ता क्रम वृत्तो व सहवृत्तो जीवस्य पर्याय अविरोधात सहावस्थाई यानी सह अवस्थाई सहवृत्ते है गति इंद्रिय काय योग वेद कषाय ज्ञान संयम आदि। तेजुबेनीय किसके नाम है, गति इंद्रिय काय योग वेद कषाय ज्ञान संयम आदि। हाँ बोलो सही है। हाँ 14 मार्ग ना है ना। यहाँ कितने भी है? देखो गति इंद्रिय काय योग वेद कषाय ज्ञान समाधि क्रमवर्ती तू क्रोधादि देवादि बाल्यादि अवस्था लक्षण। अभी इसका अर्थ नीचे देखते हैं। एक्चुअली गति और वह पर्याय युगपत भी होती है और क्रमवर्ती भी होती है। पर्याय युगपत भी होती है और क्रमवर्ती भी। अभी युगपत कौन सी और क्रमवत कौन सी उसकी बात करें। यहाँ जो अपेक्षा वो अलग है। अविरोध से एक साथ होने वाली जीव की पर्याय एक साथ होने के कारण गति इंद्रिय का योग वेद कषाय ज्ञान और संयम आदि सह अवस्थाई पर्याय तथा क्रोधादि पहले क्रोध था फिर बाद में लोभ रूप हुआ मान रूप हुआ और विरोध है बिना विरोध का एक साथ एट अ टाइम रहते उसमें विरोध नहीं होता है। देहादि और बाल्यादि अवस्था लक्षण क्रमवर्ती पर्याय अभी बाल युवान वृद्ध ये एक साथ होती अवस्था की क्रम से होती है। क्रम से देवादि यानी देव पर्याय मनुष्य पर्याय नारकी पर्याय तीजन पर्याय ये भी क्रम से होते हैं। वैसे क्रोध मान माया लोभ ये जो कषाय है वो भी क्रम से होते रहते हैं। अभी ये जो मार्गणा की बात है वैसे तो गति भी क्रम से होती परंतु ये मार्गणा जब है तो मार्गणा यानी जीवों का विभाजन विशिष्ट अपेक्षा से। अभी मनुष्य जीव है अभी मनुष्य है अभी यहाँ जीव अजीव इसकी बात नहीं है। मनुष्य है तो उसको हम डिवाइड करेंगे वो अमेरिकन है इंडियन है जापानी है तो हम कैसे क्या है हम इंडियन है। नेशनलिटी की अपेक्षा हम इंडियन है। अभी नेशनलिटी एक अपेक्षा लगा अभी व्यवसाय यानी बिजनेस की अपेक्षा दूसरी लगा। अब बिजनेस में कोई डॉक्टर है कोई इंजीनियर है कोई वर्किंग है कोई अन्य अन्य बिजनेस चल रहा है उसका व्यापार है तो उस अपेक्षा से वो अभी इंडियन नेशनलिटी है। तो नेशनलिटी और विशिष्ट बिजनेस एक साथ रहेगा कि नहीं रहेगा कि पहले नेशनलिटी होगी बाद में वो बिजनेस वाला होगा फिर बाद में ऐसा होगा तो एट अ टाइम। और ये जो इंडियन है या अमेरिकन है दोनों भी डॉक्टर वाले ग्रुप में आ सकते हैं। जब अपेक्षा बदल कर हमने अभी हमने पहले नेशनलिटी की अपेक्षा हमने डिवीजन की वो कौन से देश का आदमी है तो उसमें हमने देखा ये भारतीय है कोई अमेरिकन है। अभी हमने व्यवसाय बिजनेस क्या कर रहा है उसकी अपेक्षा से हम अभी क्लासिफिकेशन करेंगे तो वो क्लासिफिकेशन में पहले वाले जो है वो अलग ग्रुप में चले जाएंगे। अभी सारे ही पृथ्वी के विश्व के जिसको हम समझ रहे हैं सारे डॉक्टर एक ग्रुप में आएंगे सारे इंजीनियर दूसरे ग्रुप में सारे बिजनेसमैन फिर सारे वर्किंग पीपल ऐसे वो उनकी कैटेगरी बदली तो उनके ग्रुप भी बदल गए। यानी एट ए टाइम अलग अलग कैटेगरी में वो जीव आता है तो ये सारी ही कैटेगरी एट ए टाइम है कि बाद में है एट ए टाइम है ना। अभी उसमें हमने वो स्त्री और पुरुष ऐसी दो ही कैटेगरी की तो वो स्त्री और पुरुष में डिवाइड हो गए। अब एज वाइज कोई छोटे है कोई बड़े है कोई वृद्ध है तो एज वाइज हमने कैटेगरी बदली तो उसमें भी उसके अलग अलग तो उसमें नेशनलिटी एज अभी इसमें धर्म भी ले लो धर्म और उसका बिजनेस ये सारे एट ए टाइम है तो वो सहवर्ती है सारे ये सारी अपेक्षा। परंतु एक चीज की अपेक्षा वो बालक है युवान है वृद्ध है वो एक के बाद एक आएंगे वो क्रम से आएंगे। अभी जनगणना में आपको लिखना है ना आपका धर्म कौन सा है आपका उम्र क्या है आप कितना कमाते हैं ये तो सारी अलग अलग कैटेगरी में हो फिर बाद में उसकी रिवीजन होगी उनके अनुसार बराबर है। तो यहाँ क्या कहते हैं कि ये जो है गति इंद्रिय का योग वेद कषाय ज्ञान और संयम आदि सह अवस्थाई पर्याय है। सह अवस्था यानी एक साथ रहने वाली पर्याय यानी ये मार्गणा का यहाँ स्वरूप बताया कि गति अपेक्षा से कोई मनुष्य है तो वो इंद्रिय अपेक्षा से कौन सा होगा? पंचेंद्रिय होगा। काय अपेक्षा से काय मार्गण के भेद कितने होते हैं? हाँ, षटकाय होते हैं ना, पांच स्थावर और एक षटकाय, तो वो षटकायिक होगा। योग की अपेक्षा से उसके जो मनोयोग वचन योग कायोग कितने हैं उसकी गिनता करें, गिननी करें। वेद में वो तीन वेद, फिर कषाय में क्रोध मान माया लोभ रूप, ज्ञान में मनुष्य को कौन कौन सा ज्ञान है? हाँ, मति श्रुत, किसी किसी को अवधि हो सकता है, और मनुष्य लिया तो मनोपर्य होगा कि नहीं मनुष्य को? और केवल ज्ञान तो ऐसा लेना ज्ञान की अपेक्षा। और संयम, और उसमें भी संयम में सारे पड़ेंगे, असंयम वाले जीव, संयम असंयमी जीव, फिर संयम में वो सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय साक्षात, तो ये संयम मार्गणा हुई। मार्गणा में कोई जो, जैसे हमने बिजनेस की अपेक्षा, जो कुछ नहीं करता उसको भी अलग क्राइटेरिया करेंगे, उसके भी अलग ग्रुप बनाएंगे ना, बेकार बेकार वाला, वैसे लिख सकते हैं। अच्छा, और हमें तो जैन लिखना है धर्म में, वो खाली हिंदू लिख देते, वो आने वाले हैं वो खाली हिंदू लिख देते, ऐसा नहीं, जैन लिखना हुआ। वो हर पेपर में भी आ रहा है, वो जैन बौद्ध प्रदेश में, वो वितराग विज्ञान में, वो धर्म वाला जो कॉलम है वहाँ जैन लिखना। संयम में, तो ये तो संयम मार्ग है, संयम की अपेक्षा क्लासिफिकेशन करेंगे तो एक कॉलम असंयम है उनको भी लिखेंगे, एक संयम वाले को, ऐसे ऐसे। तो अभी यहाँ कितने हुए? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, और छह बताओ, चौदह का नाम लिया ना आपने। हाँ उदेंद्र भाई, नहीं यार, कौन कौन से? ज्ञान, संयम, और कौन रहेगा अभी? दर्शन, लेश्या, भव्य, सम्यक, सौनी और आहार, ये चार छह रहेगा, यानी आदि में वो सारे आ गए। ये आदि सह अवस्था ही पर्याय है, तथा क्रोधादि देवादि बाल्यादि अवस्था लक्षण क्रमवर्ती पर्याय, ये पर्याय तो क्रम से होगी। क्रम और अक्रम शब्दों के अर्थ दो प्रकार से किए जाते हैं। प्रथम तो यह कि क्रम माने क्रमशः, एक के बाद एक, अर्थात एक के बाद एक, और अक्रम माने युगपत, अर्थात एक साथ, ये एक अपेक्षा से उसका अर्थ होता है। दूसरा यह क्रम माने एक के बाद एक, और वह भी निश्चित एकदम व्यवस्थित, तथा इस रूप में कि इसके बाद यही अन्य नहीं। अक्रम माने अव्यवस्थित, कुछ भी निश्चित नहीं, चाहे जिसके बाद चाहे जो, यानी अक्रम का अर्थ दो प्रकार से किया। क्रम का अर्थ कैसे? एक के बाद एक यह भी क्रम हुआ, और हम कहते हैं जो निश्चित वही क्रम होगा, वही पर्याय होगी, अन्य नहीं होगी, उसको कहते, उसको भी क्रम कहा। जिसको हम क्रमबद्ध पर्याय में ले रहे तो वो है निश्चित होने वाली वही होगी, अन्य नहीं होगी, दोनों तरफ से फिक्स करते उसको गारंटी से, यही होगी, अकेला यही होगी कहकर नहीं रुकते, अन्य नहीं होगी, ये कन्फर्म किया ना उसको, एक क्रम में लिया। अक्रम में देखो, अक्रम मैंने अव्यवस्थित, पहले अक्रम मैंने एक साथ रहे थे उसको अक्रम कहा, अक्रम का यहाँ दूसरा अर्थ लिया अव्यवस्थित, अक्रम मैंने कैसा भी जिस क्रम में चाहे जिस क्रम में आए उसको भी कहते हैं अक्रम। तो अक्रम माने अव्यवस्थित, कुछ भी निश्चित नहीं, चाहे जिसके बाद चाहे जो, यानी जिस पर्याय के बाद चाहे जो पर्याय आ जाएगी उसमें कोई भी निश्चित नहीं है, उसको भी अक्रम कहते हैं। उक्त दोनों अर्थों में प्रथम अर्थ के अनुसार ही पर्यायों में क्रम अक्रम दोनों अपेक्षाएं घटित होती है। यानी जब पर्यायों में हमने क्रम और अक्रम घटित किया तो क्रम यानी जो हम रेगुलर कहते हैं एक के बाद एक आती है वो क्रम, और अक्रम यानी अनंत गुणों की एट अ टाइम एक एक प्रत्येक की पर्याय वो अक्रम, यानी क्रम और अक्रम जो घटित होता है वो पहले अर्थ में होता है। दूसरा अव्यवस्थित वाला जो अक्रम है तो उसमें नहीं होगा। उक्त दोनों अर्थों में प्रथम अर्थ के अनुसार ही पर्याय में क्रम अक्रम दोनों अपेक्षाएं घटित होती है, जबकि प्रस्तुत अनुशीलन में द्वितीय अर्थ की अपेक्षा क्रमबद्ध पर्याय का अनुशीलन किया गया है। यानी हम क्रमबद्ध पर्याय में जो चर्चा कर रहे हैं वो दूसरे वाला जो क्रम का अर्थ है कि वही होगी, अन्य नहीं होगी और निश्चित क्रम से होगी, उसी को हमने यहाँ क्रम कहा है, ये क्रमबद्ध वाली पर्याय में या इस पुस्तक में। तदनुसार पर्याय एक निश्चित क्रमानुसार ही होती है, अक्रम से नहीं। ऐसा सम्यक एकांत फलित होता है जो कि स्यादवादी जैन दर्शन को अभीष्ट ही है। अभीष्ट है वो, इच्छित है उसका, यानी हम चाहते भी है उसको। सम्यक और मिथ्या के भेद से एकांत भी दो प्रकार का होता है। पहले भी एकांत अनेकांत की चर्चा आई थी, सम्यक एकांत, मिथ्या अनेकांत, सम्यक अनेकांत और मिथ्या अनेकांत, वो बहुत डिटेल हमने बोला था उसके ऊपर। और अनेकांत भी दो प्रकार का है जिसकी चर्चा क्रमबद्ध पर्याय एक अनुशीलन में विस्तार से कर आए है, यहाँ भी लिखा है ना, हमने उसकी चर्चा यहाँ भी की थी। यह भी स्पष्ट किया जा चुका है कि जैन दर्शन सम्यक एकांतवादी और सम्यक अनेकांतवादी दर्शन है। उसमें सम्यक एकांत भी है और सम्यक अनेकांत है। सम्यक अनेकांत द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु पर घटित होता है और सम्यक एकांत द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु के एक अंश अर्थात द्रव्य या पर्याय पर घटित होता है। एकांत से हम कहेंगे ना कि द्रव्य नित्य ही है तो सम्यक एकांत, पर्याय अनित्य ही है अपेक्षा लगाकर पर्याय की अपेक्षा उसको अनित्य कह दिया तो वो सम्यक एकांत हुआ। और द्रव्य नित्यानित्यात्मक है ये सम्यक अनेकांत होगा, उसने दोनों ही अपेक्षाओं को ले लिया। यहाँ चूंकि पर्याय की चर्चा है अतः उस पर सम्यक एकांत ही घटित होता है। पर्याय क्रमबद्ध ही होती है, यह सम्यक एकांत है ही लगा है ना इसमें, परंतु ये सच बात है। पर्याय क्रमबद्ध ही होती है, सम्यक एकांत है और गुण अक्रमबद्ध यानी युगपत ही होते हैं, यह भी सम्यक एकांत है। दोनों ही सत्य बातें हैं। गुण और पर्याय दोनों वस्तु के यानी द्रव्य के अंश है और वस्तु अर्थात द्रव्य अंशी है, अंशों को धारण करने वाला वह अंशी। ये ख्याल में आता है कि बहुत भारी हो रहा है, क्यों समझ में आ रहे हैं? नए रूप सम्यक एकांत अंश ग्राही होता है, यानी सम्यक एकांत यह नए है और नए कैसा होता है, अंशग्राही, अंश को ग्रहण करना, अंश को ग्रहण करने वाला। और प्रमाण, प्रमाण यानी पूरा, सम्यक अनेकांत अंशी ग्राही अर्थात वस्तु ग्राही होता है, यानी पूर्ण वस्तु के सभी अंशों को ग्रहण करता है तो उसको कहते हैं अंशी ग्राही, अंशी को ग्रहण करता है। और नए है वो अंश को ग्रहण करता है, नए है वो अंश रूप वस्तु को देखता है और प्रमाण पूरी वस्तु को उसके सभी अंशों को मुख्य गौण के बिना ग्रहण करता है। नए है वो मुख्य करके ग्रहण करता है और अन्य जो अंश है ना उसके वस्तु में अनेक अंश है, एक अंश को मुख्य करता है, अनेक अंशों, अन्य अनेक अंशों को गौण करता है, गौण करके वस्तु में ही रखता है। ऐसा नहीं कि उसको पूरी वस्तु में से निकाल दिया और अकेले किसको ग्रहण किया, ऐसा नहीं, वो भी पूरी वस्तु को जानता है परंतु किस रूप में, एक अंश के रूप में। तो सीता का उदाहरण देते ना हमेशा, लव और कुश सीता को देखते हैं, पूरी सीता को देखते हैं कि अधूरी सीता को, पूरी किस रूप, एक अंश रूप, माँ के रूप, माँ उसका एक अंश है, उसमें माँ का रूप है, बहन का रूप है, भाई का, इसके पुत्री का रूप है, सारा है, पत्नी का रूप है, परंतु वो एक ही अंश रूप पूरी वस्तु दिखना उसको कहते हैं अंशग्राही, क्योंकि अन्य जो अंश है वो वस्तु में गौण रूप से रख दिए। यदि वो एक अंश को ही पकड़ता और अन्य वस्तु को गौण रूप से भी नहीं जानता तो उसने पूरी वस्तु को जाना ही नहीं, अकेले एक अंश को जाना, ऐसा नहीं होते, पूरी वस्तु को अंश रूप से ग्रहण किया उसको नहीं कहते। और उसको कहते हैं सापेक्षण है, यानी अन्य को गौण करके वहाँ है, उसमें गर्भित है उसके अंदर। तो नये रूप सम्यक एकांत अंशग्राही होता है और प्रमाण रूप सम्यक अनेकांत अंशग्राही अर्थात वस्तुग्राही होता है। गुण और पर्याय वस्तु के अंश है अर्थात वे सम्यक एकांत स्वरूप है और गुण पर्यायात्मक वस्तु अंशी होने से अनेकांत स्वरूप है। यानी जब हम गुण और पर्याय अलग अलग विचार करेंगे, गुण भी एक अंश है पर्याय भी अंश है, और वस्तु कैसी है, गुण पर्यायात्मक है। अक्रमवर्ती गुण और गुण और पर्याय वस्तु के अंश है, इसमें समझे। द्रव्य काहे से बना है, गुण पर्याय व द्रव्यम, अभी जो पंचाध्यायी में चल रहा है, तो ये वस्तु के यानी द्रव्य के अंश है, एक अंश गुण है और एक अंश पर्याय है, अतः वे सम्यक एकांत स्वरूप है। अभी दोनों को अलग अलग कंसीडर करो। गुणों हमने देखा ना, गुण कैसे है अक्रम है, पर्याय कैसी है क्रम है, उसमें क्रम वर्ती है ना। तभी गुण को अकेले को कंसीडर करो वो सम्यक एकांत, पर्याय को अकेले करो वो भी सम्यक एकांत, और गुण पर्यायात्मक दोनों को एक अभी एट ए टाइम पकड़ो अंशी को। तो गुण पर्यायात्मक वस्तु यानी गुण यह एक अंश है, पर्याय एक अंश है, गुण पर्यायात्मक वस्तु अंशी है, तो ये वस्तु अंशी होने से अनेकांत स्वरूप है। अंशी यानी द्रव्य, अंश को धारण करने वाला वो अंशी, धन को धारण करने वाला वो धनी, कहते ना धनवान कहो या धनी कहो, वैसे आपने नाम पढ़े ना द्रव्य के, गुण को धारण करे उसको क्या कहेंगे, गुणी, गुणी कहो या द्रव्य कहो एक ही बात है। तो यहाँ क्या कहते हैं कि वस्तु अनेकांत स्वरूप है, हम कहते आए आज तक, क्यों अनेकांत स्वरूप है, तो उसमें वो गुण और पर्याय दोनों स्वरूप है। यहाँ सारे ही पर्याय गुण एक इकट्ठे, यहाँ दो ही भाग किए हैं, वो गुणों में अनंत विभाग करेंगे, उसकी चर्चा यहाँ नहीं लेगी, कि गुण एक साथ है सारे ही और पर्याय क्रम के बाद एक के बाद एक एक होती है, इतना ही लिया है। तो गुण पर्याय व द्रव्य, अभी गुणों का स्वरूप गुणों के विभाजन वो बात वो आगे वो उसके प्रभेदों में जाएंगे, जितने भेद करेंगे उतने नए भी होंगे। यहाँ दो नए समझते समझते पसीना छूट रहा है, वो अनंत नए कैसे समझोगे, ज्यादा भेद में उलझो मत। मूल प्रयोजन क्या है यहाँ, अनेकांत स्वरूप वस्तु सिद्ध करना है। वस्तु कैसी है, गुण पर्यायात्मक है, आत्मक लगाया था ना, गुण पर्याय ही मय है, तो भी गुण एक अंश है पर्याय एक अंश है और ये वस्तु अंशी है, तो वस्तु में दोनों ही है ना। गुण को हमने एकांत का, पर्याय को भी वो एकांत का, एकांत यानी एक धर्म उसका, और ये अनेक धर्म वाली अनेकांत ऐसी वस्तु है, तो वस्तु अनेकांत स्वरूप है और उसके एक एक अंश है वो उसके एकांत है, उसके सम्यक एकांत है। अक्रमवर्ती गुण और क्रमवर्ती पर्याय, आई ना बात। अक्रमवर्ती यानी वो एट अ टाइम है सारे ही अनंत गुण सहभावी, और क्रमवर्ती पर्याय क्रमभावी पर्याय। इस प्रकार गुण पर्यायात्मक वस्तु में अनेकांत घटित होता है। वैसे तो एक अपेक्षा हम ऊपर पर्यायों में भी क्रम अक्रम घटित कर आए हैं, और यह भी बताए हैं कि अकलंक देव ने ऐसा प्रयोग किया है। कहाँ किया है अकलंक देव ने, हाँ नलिन भाई, हाँ आप बोलो, हाँ पूरा नाम बोलो ना, राजवर्तिक दो है, नहीं राजवर्तिक दो नहीं है, पूरा, हाँ पूरा नाम तत्वार्थ राजवर्तिक, अभी नाम आया ना ऊपर, दूसरा एक वार्तिक है तत्वार्थ श्लोक वार्तिक भी एक वार्तिक है, तत्वार्थ श्लोक वार्तिक नाम का भी एक, वो राजवर्तिक अकेला कह सकते आप ऐसी बात नहीं, परंतु पूरा नाम अभी हमने पढ़ा था, अभी ऊपर बात आई थी ना, मतलब 106 पर तत्वार्थ राजवार्तिक में, वहाँ तो लिखने वाले आचार्यों का नाम नहीं लिखा था, अकेले शास्त्र का नाम लिखा था। और अब रेफरेंस क्या लिख रहे? अभी तो हमने अकलंग देव की बात देखी थी, तो ये हमें प्रश्न उठना चाहिए, अरे अकलंग देव की बात तो आई नहीं थी, कहाँ आनी चाहिए? क्यों? आपने पूछना चाहिए था क्या कि अकलंग देव ने ऐसा प्रयोग किया है, और उसके पहले क्या लिया है? यह भी बताए है, बताए ने अभी इस पुस्तक में हमने अभी अभी बताया है कि अकलंक देव ने ऐसा प्रयोग किया है। तो हमें पहले प्रश्न उठना है कि अभी बताया और अकलंक देव ने बताया, और हमारे कुछ याद नहीं आ रहा है कि अकलंक देव का नाम तो सुना नहीं था। तो ये जो तत्वार्थ राजवार्तिक है वह उसमें अकलंक देव ने बताया है। फिर भी यदि आप इसी अपेक्षा अकेली पर्याय में क्रम अक्रम घटाने का हट करेंगे, तो फिर हम आपसे यह भी कह सकते हैं कि अकेली पर्याय में आप नित्यानित्यात्मक अनेकांत भी घटाइए। एक पर्याय में ही, यानी पर्याय में ही नित्य और अनित्य दोनों घटाओ। वो क्या घटाना चाहता है? क्रम भी है और अक्रम भी है। क्रम किस अपेक्षा से घटाया था अभी तत्वार्थ राज, यानी 14 मार्गणा की अपेक्षा से वो अक्रम है कहा था। एट ए टाइम वो गति वाला भी है, इंद्रिय वाला भी है, काय वाला भी है, ज्ञान वाला भी है, संयम वाला भी, परंतु उसकी जो एक के बाद जो मनुष्य पर्याय, देव पर्याय वगैरह पर्याय होगी, बाल युवा या वृद्धावस्था होगी, वो तो क्रम से होगी, तो उसमें वो क्रम अक्रम घटाया था। तो वैसे तो हो सकता है, परंतु ये क्या कहता है? मार्गणा में अलग अलग मार्गणा की अपेक्षा सहवर्ती कहा था, तो वो तो एक ही पर्याय में क्रम और अक्रम घटाना चाहता है। एक ज्ञान गुण की पर्याय में ही वो क्रम और अक्रम घटाना चाहता है। मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान वो क्रम से भी हो गया, अक्रम से भी हो गया, ऐसा उसको कहना है, तो वो उसको घटित नहीं हो सकता। तो क्या कहते कि आप अगर एक ही पर्याय में ये घटाना चाहते हैं तो नित्यानित्यात्मक भी घटाओ। तो हम पर्याय को अनित्य कहते हैं, पर्याय अपेक्षा तो अनित्य है, अभी पर्याय पर ही नित्य घटाओ ऐसा कहते हैं, तो नहीं घट सकता। मैंने ऐसा झूठा अनेकांत तो नहीं लगेगी, तो अनित्यात्मक अनेकांत भी घटाइए, अथवा अकेले पर्याय रहित द्रव्य में ही नित्यानित्यात्मक अनेकांत घटाकर बता दीजिए। पर्याय की अपेक्षा द्रव्य में अनित्यता लगती है, परंतु अकेला द्रव्य पर्याय बिना का ले लो, वहां अनित्यता लगाओ और नित्यता भी लगाओ, तो अनित्यता कैसे लगाओ? नहीं लग सकती। आखिर नित्यानित्यात्मक अनेकांत भी तो गुण पर्यायात्मक वस्तु में ही घटित होता है, अकेली पर्याय में नहीं और अकेले द्रव्य में भी नहीं। नहीं, जो कायम रहने वाला अंश है उसमें भी नहीं घटेगा, और वो क्षणिक वाली पर्याय उसमें भी नहीं घटित होगा, तो गुण पर्यायात्मक वस्तु में ही अनेकांत घटित होगा। अनित्य भी है, परंतु उसमें हाँ दोनों अपेक्षा होगी तो दोनों अपेक्षा लगेगी ना, गुण और पर्याय दोनों वस्तु में होगी तो ही नित्य और अनित्य दो धर्म होंगे। अभी पर्याय को निकाल दो तो अकेले जो नित्य अंश में नित्य और अनित्य दोनों कैसे घटित होंगे? नहीं हो सकते। वैसे अनित्य में ही नित्य अनित्य दोनों घटित कराओ, नहीं हो सकते। अब ये चाहता है कि एक ज्ञान की पर्याय, एक दर्शन की पर्याय, जिसमें एक ही पर्याय जो हमने क्रमवर्ती सिद्ध किया है, अभी उसमें भी अक्रम लगाओ। उसमें कैसे अक्रम होगा? ज्ञान दर्शन चारित्र सबकी एट ए टाइम हो सकती है, परंतु अकेले ज्ञान गुण में ही जो एक पर्याय एक के बाद एक आने वाली है उसमें अभी अक्रम घटाओ, तो उसमें अक्रम घटित नहीं हो सकता। तो ऐसा प्रश्न करने वाले को पूछते हैं कि तुम अकेली पर्याय में नित्य नित्य भी घटाकर दिखाओ, नहीं घटा सकते हैं, तो इसको भी जो हम कहते हैं वैसा मानो। जैसे वस्तु द्रव्य दृष्टि से नित्य है और पर्याय दृष्टि से अनित्य, क्या पर्याय रहित अकेले द्रव्य में या अकेली पर्याय में नित्यानित्यात्मकता घट सकती है? नहीं। तो फिर क्रम अक्रम को भी अकेले द्रव्य या अकेली पर्याय में घटित करने का हट क्यों है? ना पूरा द्रव्य ले लो तो उसमें अनंत गुणों की अनंत पर्याय अक्रम से रहती है, परंतु अभी पर्याय को यानी वो द्रव्य को निकाल ही दो और अकेला पर्याय को ही कंसीडर करो, तो पर्याय जो होगी वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद ही होगी। क्रम अक्रम का अनेकांत भी यहाँ गुण चाहिए, गण हुआ है, गुण पर्यायात्मक वस्तु में ही घटित होगा। अनेकांत का सही स्वरूप समझे बिना चाहे जहाँ उल्टा सीधा अनेकांत लगा देना अच्छी बात नहीं है। मैंने पहले बताया था ना कि शास्त्र के शब्द कहीं कहीं पर घटा देते हैं और मानते हैं कि चलो हम बहुत अभ्यास हो गए। अनेकांत को घटित करने के पहले उसका सही स्वरूप समझ लेना चाहिए। छोटे बच्चे कोई भी शब्द सीखते हैं ना तो कहीं पर भी लगा देते, कोई नया शब्द सुना तो कहीं पर वाक्य में उसका प्रयोग होते रहता है उनका। वैसे ही अनेकांत शब्द सुना शास्त्र में से तो चाहे जैसा लगा लेते, परंतु उसका सही स्वरूप समझना आवश्यक है उसको। इसीलिए वहाँ बाल चेष्टा कही थी ना उसको, क्या लिखा था, उभयाभासी बाल चेष्टा है, क्या लिखा था अभी कहाँ गए वो? अच्छा डॉक्टर को याद भी है। हाँ उभयाभासी बाल चेष्टा है ये बाल चेष्टा, तो इसीलिए बालक लोग ऐसे यूज करते हैं कहीं भी कोई भी शब्द। एक से तीन पेज पर नीचे से दूसरा पैराग्राफ, तीसरा ये बहुत बड़ा प्रश्न हुआ आज का, ये 13 नंबर का। देखो और आगे बढ़ते प्रश्न, अकाल मृत्यु के संदर्भ में आपने ही तो घड़े के पानी और अपराधी के जल से जेल से छूटने आदि का उदाहरण देकर हमें देखा था ना, घड़े में छिद्र था तो वो तो इतने समय में खाली हो जाता है, उसके 10 घंटे में खाली होना था, तुम किसी भविष्य ज्ञानी ने जाना कि वो ऐसे ऐसे होगा, वो तो सारा हमने पढ़े हैं। ये उदाहरण देकर यह बताया था कि केवली के ज्ञान के अनुसार तो मरण स्वकाल में ही होते हैं, किंतु ज्योतिष आदि सूक्ष्म ज्ञान के अनुसार जो भी मरण आदि संबंधी भविष्य बताया जाता है उसमें आयु के अपकर्षण आदि के द्वारा फेरफार भी हो जाता है। और ये तो सारा प्रश्नकर्ता का प्रश्न है, ऐसा आपने बताया, अब इसके पर वो प्रश्न पूछता है। इससे तो यह प्रतीत होता है कि केवली के ज्ञानानुसार पर्याय क्रमबद्ध और हमारे ज्ञानानुसार अक्रमबद्ध होती है, फिर भी वही बात चल रही है। उत्तर, उक्त उदाहरणों से तो यह सिद्ध किया गया था कि मरणादि प्रत्येक कार्य यानी पर्याय होता तो स्वकाल में ही है, पर उसका कथन दो प्रकार से होता है। यह नहीं बताया था कि कुछ पर्याय स्वकाल में होती है और कुछ अकाल में भी हो जाती है, ऐसा नहीं बताया था। आयु कर्म की स्थिति के अपकर्षण आदि के बिना आयु कर्म की स्थिति पूर्ण होने के उपरांत होने वाले मरण को काल मरण और आयु कर्म की स्थिति का अपकर्षण आदि से होने वाले मरण को अकाल मरण कहा जाता है। वो कथन उसका आता है क्योंकि उसका अपकर्षण बिना, देखो आयु कर्म हम बांधते हैं, यहाँ मरण हुआ तो दूसरी जो बांधी हुई आयु है उसका उदय चालू हो गया। उसका उदय कब तक होगा तो जितने समयों की उसने स्थिति बांधी है वो एक एक समय में एक एक आयु कर्म निषेक उदय में आते रहेंगे। ये अंतिम निषेक खिरा कि वो आयु उसकी पूर्ण हो गई, फिर और नई जो बांधी होगी आयु वहां उसका अगली आयु चालू हो जाएगी। तो अभी उसके पास इतने आयु के परमाणु है, एक 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 करके ये अंतिम निषेक तक उसकी आयु चलती रहेगी, तो इसको हम कहते हैं वो काल मरण। समझो यहाँ अपकर्षण हुआ तो ये सारे ही निषेक जल्दी खिर गए तो उसको हम अकाल मरण कहते हैं। यानी वो तो कथन की पद्धति है दो अलग अलग, परंतु क्रमबद्ध की अपेक्षा उसका मरण निश्चित इसी समय पर और इसी निमित्त से, यह निमित्त भी जो कर्म का जो वहाँ अपवर्तन है वो भी निश्चित है उसकी उदय, इसीलिए तो हम उसको नाम देते हैं ना। हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या होती है, अरे आदमी है तो 50-60 साल 70 साल तो जिएगा, उस अपेक्षा हमारा सूक्ष्म ज्ञान है, हम जानते नहीं है, उस अपेक्षा से हम कह देते हैं उसको। अकाल मरण का आशय स्वकाल के बिना होने वाले मरण से नहीं है अपितु आयु कर्म के अपकर्षण आदि से है। आयु कर्म पूरा जितना बांधा है उतने तक उदय होता रहे तो उसको हम कहेंगे काल मरण, अपकर्षण होगा तो उसी को कहेंगे अकाल मरण। अपकर्षण को अकाल कहा है, आयु के अपकर्षण आदि के कारण अकाल मरण उसकी संज्ञा मात्र है, उसका नाम दिया है उसको, वो नाम ही बताता है कि यहाँ अपकर्षण वगैरह हुआ है, आयु की वो उदीर्ण होकर कदली घात होकर जल्दी मर गया। वास्तव में तो प्रत्येक कार्य स्वकाल में ही होता है। मोक्ष एवं सम्यक स्वरूपी कार्य के संबंध में कलश टीकाकार ये बात है, कलश टीकाकार यानी समयसार कलश नाम के ये जो टीका लिखने वाले पांडे राजमल जी लिखते हैं, यह जिस काल बीतने पर मोक्ष जाएगा ऐसी नोंद केवल ज्ञान में है। हमारे सारे की मोक्ष की तिथि टाइम सब निश्चित है, केवल यानी के ज्ञान में है। यद्यपि सम्यक स्वरूप जीव द्रव्य परिणमता है तथापि काल लब्धि के बिना करोड़ उपाय किए जाए तो भी जीव सम्यक स्वरूप परिणमन योग्य नहीं। कोई भी घटना नवीन घटित नहीं होती अपितु वह पहले से ही स्थित है, निश्चित है, वह तो मात्र स्वकाल में प्रकट होती है। इस प्रकार का भाव सापेक्षवाद के प्रबल प्रचारक प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने भी व्यक्त किया है। वो उनका वो है ना रिलेटिविटी का सिद्धांत होता है, वो उसको कहते हैं सापेक्षवाद। उन्होंने क्या लिखा है कि इवेंट्स डू नॉट हैपन, दे ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये सारा सुनिश्चित है, और आर सीन ऑन द टाइम मशीन, वो टाइम मशीन पर देखी जाती है कि कौन सी घटना कब घटेगी, वो तो निश्चित है कहते हैं, एग्जिस्ट, घटनाएं घटती नहीं है, वे पहले से ही विद्यमान है, विद्यमान है लिखा है, भविष्य की घटनाएं विद्यमान है अपने अपने निश्चित समय पर, तथा काल चक्र पर देखी जाती है। देखो जिसको साइंटिस्ट का जोर आता है ना उसके लिए ऐसी ऐसी बीच में दे देते, उसके साइंटिस्ट के भी कथन दे देते है ताकि थोड़ा ये भोला जो मान ले, उल्लू नहीं कहेंगे ना भोला ही कहेंगे, क्या करें। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नवो सदा देतो हूं।